Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE March 2020 Examination, in Hindi as a Second Language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास 1, प्रश्न 1 से 6. प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
होटल गुलाब निवास में आप सभी का स्वागत है. आप सबके लिए कमरों की व्यवस्था कर दी गई है. जल्दी से नाश्ता कर लें और तैयार हो जाएं. पुष्कर मेले से संबंधित जरूरी जानकारी और मानचित्र आपके कमरों में मौजूद हैं. आप चाहें तो निजी गाइड भी किराए पर ले सकते हैं. हम ठीक एक घंटे बाद मेले के लिए रवाना होंगे. मेले में अपने सामान का ध्यान रखें और अधिकृत दुकानों से ही चीजें खरीदें. मंदिर और सरोवर में प्रवेश करते समय शालीन कपड़ों में रहें. कोई समस्या हो तो आप मेरे या होटल के फोन पर संपर्क कर सकते हैं. होटल गुलाब निवास में आप सभी का स्वागत है. आप सबके लिए कमरों की व्यवस्था कर दी गई है. जल्दी से नाश्ता कर लें और तैयार हो जाएं. पुष्कर मेले से संबंधित जरूरी जानकारी और मानचित्र आपके कमरों में मौजूद हैं. आप चाहें तो निजी गाइड भी किराए पर ले सकते हैं. हम ठीक एक घंटे बाद मेले के लिए रवाना होंगे. मेले में अपने सामान का ध्यान रखें और अधिकृत दुकानों से ही चीजें खरीदें. मंदिर और सरोवर में प्रवेश करते समय शालीन कपड़ों में रहें. कोई समस्या हो तो आप मेरे या होटल के फोन पर संपर्क कर सकते हैं.
संवाद दो. हेलो.
हेलो
जी. माफ कीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
आपको किससे बात करनी है?
जी, अनिल से. अनिल मनचंदानी.
देखिए, ये उनका नंबर नहीं है. आपने कौन सा नंबर डायल किया था?
ओह, माफ कीजिए, क्या ये 9878685847 नहीं है?
जी, नंबर तो सही है लेकिन अनिल मनचंदानी का नहीं है.
लेकिन मेरी तो परसों ही उनसे बात हुई है.
पता नहीं, ये नंबर तो बरसों से मेरा है.
हेलो.
हेलो
जी. माफ कीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
आपको किससे बात करनी है?
जी, अनिल से. अनिल मनचंदानी.
देखिए, ये उनका नंबर नहीं है. आपने कौन सा नंबर डायल किया था?
ओह, माफ कीजिए, क्या ये 9878685847 नहीं है?
जी, नंबर तो सही है लेकिन अनिल मनचंदानी का नहीं है.
लेकिन मेरी तो परसों ही उनसे बात हुई है.
पता नहीं, ये नंबर तो बरसों से मेरा है. संवाद तीन.
शिमला में अगले सप्ताह मिला जुला मौसम रहने की संभावना है. जाखो पहाड़ी और आसपास की चोटियों पर सोमवार को तेज धूप खिली रहेगी, लेकिन बुधवार को बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ थोड़ी बर्फबारी भी हो सकती है. पंजाब और राजस्थान में दबाव बढ़ने के कारण शनिवार और रविवार को एक बार फिर तेज धूप खिलेगी, लेकिन शुक्रवार को मौसम ठंडा रहेगा. शिमला और आसपास की पहाड़ियों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी रहेगी. शिमला में अगले सप्ताह मिला जुला मौसम रहने की संभावना है। जाखो पहाड़ी और आसपास की चोटियों पर सोमवार को तेज धूप खिली रहेगी, लेकिन बुधवार को बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ थोड़ी बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब और राजस्थान में दबाव बढ़ने के कारण शनिवार और रविवार को एक बार फिर तेज धूप खिलेगी, लेकिन शुक्रवार को मौसम ठंडा रहेगा। शिमला और आसपास की पहाड़ियों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी रहेगी।
संवाद चार।
भाई साहब, एक कमरा किराए पर लेना है।
केवल कमरा चाहिए या उसके साथ रसोई भी?
जी हाँ, रसोई के साथ साथ अपनी बालकनी या छत भी हो तो अच्छा रहेगा।
किसी कोठी में लेना चाहेंगी या फ्लैट में?
सब किराए और जगह पर निर्भर करता है। वैसे सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
तब तो कोठी ठीक रहेगी। एक दो दुछत्तियां दिखा सकता हूँ, लेकिन किराया ज्यादा लगेगा।
कोई बात नहीं, दिखा तो दीजिए। भाई साहब, एक कमरा किराए पर लेना है।
केवल कमरा चाहिए या उसके साथ रसोई भी?
जी हाँ, रसोई के साथ साथ अपनी बालकनी या छत भी हो तो अच्छा रहेगा।
किसी कोठी में लेना चाहेंगी या फ्लैट में?
सब किराए और जगह पर निर्भर करता है। वैसे सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
तब तो कोठी ठीक रहेगी। एक दो दुछत्तियां दिखा सकता हूँ, लेकिन किराया ज्यादा लगेगा।
कोई बात नहीं, दिखा तो दीजिए। संवाद पांच।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। भारत को महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में मिताली राज का अहम योगदान था। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब मिला है, जबकि दूसरे बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। मिताली राज अपना पुरस्कार लेने के लिए समारोह में मौजूद नहीं थी, इसलिए उनका पुरस्कार उनके माता पिता ने लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। भारत को महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में मिताली राज का अहम योगदान था। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब मिला है, जबकि दूसरे बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। मिताली राज अपना पुरस्कार लेने के लिए समारोह में मौजूद नहीं थी, इसलिए उनका पुरस्कार उनके माता पिता ने लिया।
संवाद छः।
कहिए बहन जी, क्या सेवा करूं?
पानी की बोतल मिलेगी, ठंडी?
जी जरूर मिलेगी। एक लीटर, दो लीटर या चार?
जी, दो लीटर वाली ही चलेगी।
और पान वान नहीं लगवाएंगी?
कैसा पान लगाते हैं आप?
सादा, मीठा, मघई, जो आपको पसंद हो। ये देखिए, लगे रखें।
ये सब तो काफी बड़े लगते हैं। चलिए मघई ही लगा दीजिए।
कहिए बहन जी, क्या सेवा करूं?
पानी की बोतल मिलेगी, ठंडी?
जी जरूर मिलेगी। एक लीटर, दो लीटर या चार?
जी, दो लीटर वाली ही चलेगी।
और पान वान नहीं लगवाएंगी?
कैसा पान लगाते हैं आप?
सादा, मीठा, मघई, जो आपको पसंद हो। ये देखिए, लगे रखें।
ये सब तो काफी बड़े लगते हैं। चलिए मघई ही लगा दीजिए।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो प्रश्न सात। नई दिल्ली के शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की संग्रहपाल बॉबी निगम के साथ पत्रिका के संवाददाता प्रेम मेहरा की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। ये बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
बॉबी निगम जी, हमारे बाल श्रोताओं की ओर से आज की मुलाकात में आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रेम जी।
बॉबी जी, गुड्डे गुड़िया घर घर में पाए जाते हैं। हम सब बचपन में उनसे खेले हैं, हमने उनके नाच देखे हैं, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का विचार अपने आप में अनूठा है। क्या आप बता सकती हैं इसे बनाने का विचार कहाँ से आया और इतनी सारी गुड़ियां जमा कैसे हुई?
प्रेम जी, गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार भारत के जाने माने कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लई का था। उन्हें हंगरी के एक राजनयिक ने एक गुड़िया भेंट की थी। उसी से उनके मन में दुनिया भर की गुड़ियां जमा करने का विचार आया और वे अपनी देश विदेश की यात्राओं से लौटते समय वहां की गुड़ियां साथ लाने लगे।
इस तरह तो बहुत सी गुड़ियां जमा हो गई होंगी। इतनी सारी गुड़ियों का वे करते क्या थे, उन्हें कहां रखते थे?
शंकर पिल्लई को बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे गुड्डे गुड़ियों से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए अपनी गुड़ियों की प्रदर्शनियां लगाना शुरू किया। ऐसी ही एक प्रदर्शनी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ गए थे। इंदिरा जी को इस प्रदर्शनी ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने शंकर पिल्लई को एक अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय बनाने के लिए कहा।
लेकिन संग्रहालय में तो हजारों गुड्डे गुड़ियां हैं, क्या ये सभी शंकर पिल्लई ने जमा किए थे?
नहीं, लेकिन उनके द्वारा जमा किए गए गुड्डे गुड़ियों की संख्या काफी बड़ी है। वैसे नेहरू जी और इंदिरा जी का भी इस संग्रहालय से काफी लगाव था, इसलिए उन्होंने सरकारी तौर पर भेंट में मिले सारे गुड्डे गुड़ियों को इस संग्रहालय को दान कर दिया। उनसे प्रेरित होकर दुनिया भर के देशों के राजदूतों ने भी अपने अपने देश के चुनिंदा गुड्डे गुड़ियां संग्रहालय को दान किए, जिसकी वजह से इतना विशाल और विविधता वाला संग्रह तैयार हो गया।
वैसे यह संग्रहालय नई दिल्ली में है कहां पर बॉबी जी?
प्रेम जी, अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय बहादुर शाह जफर मार्ग पर बाल पुस्तक न्यास की इमारत में स्थित है। आप शायद जानते ही होंगे कि बाल पुस्तक न्यास की स्थापना भी शंकर पिल्लई ने ही की थी, जिसने भारत में बाल साहित्य के विकास की नींव डाली थी। कुछ वर्षों बाद बाल पुस्तक न्यास की इमारत में ही अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना कर दी गई और उसे शंकर पिल्लई की याद में शंकर गुड़िया संग्रहालय का नाम दिया गया।
बॉबी जी, इस संग्रहालय की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों से भी बड़ी संख्या में बड़े लोग इसकी प्रदर्शनियों में जाने लगे हैं, इसकी वजह क्या है?
इसकी एक वजह तो यही है कि कंप्यूटर खेलों और डिजिटल पात्रों की आज की आभासी दुनिया में गुड्डे गुड़िया संग्रहालय की चीजें बनते जा रहे हैं। लोग इनमें अपने उस खोए बचपन को ढूंढने आते हैं जो उन्हें गुड्डे गुड़ियों के जरिए परी कथाओं की खुशियों से भरी दुनिया में ले जाता था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बच्चों और बड़ों सभी को आकर्षित करता है।
कहीं आप समाज और इतिहास की तरफ तो इशारा नहीं कर रही?
जी, मैं उसी पहलू की बात कर रही थी। साहित्य, सिनेमा और संगीत की तरह गुड्डे गुड़िया भी किसी देश, समाज और इतिहास के दौर के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें बता सकते हैं।
मसलन?
मिसाल के तौर पर भारत के विभिन्न राज्यों के गुड्डे गुड़िया ज्यादातर धार्मिक कथानकों और पात्रों पर आधारित है। राधा कृष्ण की गुड़िया, गणगौर की गुड़िया और कथकली के पात्रों की गुड़िया। वैसे ग्रामीण और कबायली जनजीवन की झांकियां पेश करने वाली गुड़िया भी मौजूद हैं, जैसे पनिहारी की गुड़िया, गड़ियारे की गुड़िया या फिर सपेरों और मदारियों की गुड़िया।
पश्चिमी देशों और चीन जापान जैसे पूर्वी देशों की गुड़िया कैसी हैं?
पश्चिमी देशों की गुड़ियों में राजकुमारियों, परियों और जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों की गुड़ियों की संख्या ज्यादा है। घुड़सवार कुलीनों और स्वेटर बुनती महिलाओं की गुड्डे गुड़ियां भी खूब है। चीनी और जापानी गुड्डे गुड़ियां रखवाली करते समुराई योद्धाओं और पारंपरिक पोशाक और छाते में इठलाती महिलाओं के जीवन की झांकी प्रस्तुत करती हैं।
बॉबी जी, दिल्ली के शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। बॉबी निगम जी, हमारे बाल श्रोताओं की ओर से आज की मुलाकात में आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रेम जी।
बॉबी जी, गुड्डे गुड़ियां घर घर में पाए जाते हैं। हम सब बचपन में उनसे खेले हैं, हमने उनके नाच देखे हैं, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का विचार अपने आप में अनूठा है। क्या आप बता सकती हैं इसे बनाने का विचार कहां से आया और इतनी सारी गुड़ियां जमा कैसे हुई?
प्रेम जी, गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार भारत के जाने माने कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लई का था। उन्हें हंगरी के एक राजनयिक ने एक गुड़िया भेंट की थी। उसी से उनके मन में दुनिया भर की गुड़ियां जमा करने का विचार आया और वे अपनी देश विदेश की यात्राओं से लौटते समय वहां की गुड़ियां साथ लाने लगे।
इस तरह तो बहुत सी गुड़ियां जमा हो गई होंगी। इतनी सारी गुड़ियों का वे करते क्या थे, उन्हें कहाँ रखते थे?
शंकर पिल्लई को बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे गुड्डे गुड़ियों से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए अपनी गुड़ियों की प्रदर्शनियां लगाना शुरू किया। ऐसी ही एक प्रदर्शनी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ गए थे। इंदिरा जी को इस प्रदर्शनी ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने शंकर पिल्लई को एक अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय बनाने के लिए कहा।
लेकिन संग्रहालय में तो हजारों गुड्डे गुड़िया हैं, क्या ये सभी शंकर पिल्लई ने जमा किए थे?
नहीं, लेकिन उनके द्वारा जमा किए गए गुड्डे गुड़ियों की संख्या काफी बड़ी है। वैसे नेहरू जी और इंदिरा जी का भी इस संग्रहालय से काफी लगाव था, इसलिए उन्होंने सरकारी तौर पर भेंट में मिले सारे गुड्डे गुड़ियों को इस संग्रहालय को दान कर दिया। उनसे प्रेरित होकर दुनिया भर के देशों के राजदूतों ने भी अपने अपने देश के चुनिंदा गुड्डे गुड़ियां संग्रहालय को दान किए, जिसकी वजह से इतना विशाल और विविधता वाला संग्रह तैयार हो गया।
वैसे यह संग्रहालय नई दिल्ली में है कहां पर बॉबी जी?
प्रेम जी, अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय बहादुर शाह जफर मार्ग पर बाल पुस्तक न्यास की इमारत में स्थित है। आप शायद जानते ही होंगे कि बाल पुस्तक न्यास की स्थापना भी शंकर पिल्लई ने ही की थी, जिसने भारत में बाल साहित्य के विकास की नींव डाली थी। कुछ वर्षों बाद बाल पुस्तक न्यास की इमारत में ही अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना कर दी गई और उसे शंकर पिल्लई की याद में शंकर गुड़िया संग्रहालय का नाम दिया गया।
बॉबी जी, इस संग्रहालय की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों से भी बड़ी संख्या में बड़े लोग इसकी प्रदर्शनियों में जाने लगे हैं, इसकी वजह क्या है?
इसकी एक वजह तो यही है कि कंप्यूटर खेलों और डिजिटल पात्रों की आज की आभासी दुनिया में गुड्डे गुड़िया संग्रहालय की चीजें बनते जा रहे हैं। लोग इनमें अपने उस खोए बचपन को ढूंढने आते हैं जो उन्हें गुड्डे गुड़ियों के जरिए परी कथाओं की खुशियों से भरी दुनिया में ले जाता था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बच्चों और बड़ों सभी को आकर्षित करता है।
कहीं आप समाज और इतिहास की तरफ तो इशारा नहीं कर रही?
जी, मैं उसी पहलू की बात कर रही थी। साहित्य, सिनेमा और संगीत की तरह गुड्डे गुड़िया भी किसी देश, समाज और इतिहास के दौर के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें बता सकते हैं।
मसलन?
मिसाल के तौर पर भारत के विभिन्न राज्यों के गुड्डे गुड़िया ज्यादातर धार्मिक कथानकों और पात्रों पर आधारित हैं। राधा कृष्ण की गुड़िया, गणगौर की गुड़िया और कथकली के पात्रों की गुड़िया। वैसे ग्रामीण और कबायली जनजीवन की झांकियां पेश करने वाली गुड़िया भी मौजूद हैं, जैसे पनिहारी की गुड़िया, गड़ियारे की गुड़िया या फिर सपेरों और मदारियों की गुड़िया।
पश्चिमी देशों और चीन जापान जैसे पूर्वी देशों की गुड़िया कैसी हैं?
पश्चिमी देशों की गुड़ियों में राजकुमारियों, परियों और जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों की गुड़ियों की संख्या ज्यादा है। घुड़सवार कुलीनों और स्वेटर बुनती महिलाओं की गुड्डे गुड़िया भी खूब है। चीनी और जापानी गुड्डे गुड़िया रखवाली करते समुराई योद्धाओं और पारंपरिक पोशाक और छाते में इठलाती महिलाओं के जीवन की झांकी प्रस्तुत करती हैं।
बॉबी जी, दिल्ली के शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन, प्रश्न 8 से 15। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की अंतरिक्ष वैज्ञानिक ऋतु सेमवाल के साथ पत्रकार आकाशदीप की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
रितु सेमवाल जी, नए क्षितिज के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद आकाश जी।
रितु जी, आपका रुझान चिकित्सा, वकालत और कला जैसे पारंपरिक विषयों की बजाय अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ कब और कैसे हुआ?
आकाश जी, चांद तारों से मुझे बचपन से ही प्यार हो गया था। बचपन में घंटों घर की छत पर जाकर चांद तारों को निहारती रहती थी। तरह तरह के सवाल मन में उठते, घर वालों से उनका जवाब ना मिलने पर किताबें छानती फिरती। तभी मन में ठान ली थी कि इन रहस्यों की गुत्थियां खोलनी है, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना है।
घर वालों की क्या राय थी?
हमारा परिवार लखनऊ का एक मध्यवर्गीय परिवार था। फिजूल खर्ची के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन पढ़ाई पर पूरा जोर दिया जाता था। हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया, लेकिन ट्यूशन कोचिंग कभी नहीं कराई गई। पिता रक्षा सेवा में थे, माँ कभी घर का काम करने के लिए नहीं कहती थी। उनका एक ही सपना था कि बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बने। इसलिए 10वीं पास करने के बाद मैंने दोस्तों की सलाह से फैसला किया कि मुझे अंतरिक्ष विज्ञान ही पढ़ना है।
आपने काफी कठिन विषय चुना, इसके लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया?
चांद तारों की दुनिया में दिलचस्पी तो थी ही, विज्ञान के समाचारों को ध्यान से पढ़ने लगी, अखबारों की कतरने संभाल कर रखती और बाद में अपने अध्यापकों से उन पर बहस करती। 12वीं के साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी थी। विज्ञान संस्थान में प्रवेश पाकर अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। सौभाग्य से जैसे ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से बुलावा आया तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा।
लेकिन इसरो तो बेंगलुरु में है, आपको लखनऊ छोड़कर बेंगलुरु जाना पड़ा होगा।
जी हाँ, माँ को चिंता थी कि बेटी इतनी दूर अकेली कैसे रहेगी, पर उन्होंने रोका नहीं, खुशी खुशी जाने दिया और मैं 2 दिन का सफर तय करके इसरो पहुंची। अपनी मंजिल की ओर ये मेरा पहला कदम था।
कैसा लगा आपको वहां पहुंचकर?
मुझे लगा कि जैसे वाकई सितारों का जहां मिल गया। हालांकि उन दिनों इसरो में बहुत कम महिला वैज्ञानिक काम करती थीं, लेकिन मुझे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिला, जिनमें मंगलयान को मैं सबसे प्रमुख मानती हूँ।
मंगलयान पर काम करने की जिम्मेदारी आपको कैसे मिली?
सब कुछ अचानक ही हुआ था। हमारी एक महत्वपूर्ण परियोजना पूरी ही हुई थी कि मुझे बुलाकर कहा गया कि मुझे मंगलयान पर काम करना है। मुझे मंगलयान का संचालन उपनिदेशक बनाया गया था और अभियान को 18 महीनों के भीतर पूरा करना था।
मंगलयान अभियान की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?
सबसे बड़ी चुनौती यही थी, हमें पहली बार में सफलता हासिल करनी थी। अमरीका, रूस, चीन और जापान सभी देश कोशिश कर चुके थे, लेकिन किसी देश का अभियान पहली बार में सफल नहीं हुआ था। अभियान की कामयाबी हमारे संचालन सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती थी।
तब तो काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी।
बस पूछिए मत, सुबह शाम समय का कोई हिसाब नहीं था, ना कोई छुट्टी ना आराम। 10 महीने पलक झपकते ही निकल गए। घर में बच्चे परेशान हो उठे थे, लेकिन 10 महीने बाद मंगलयान का संचालन करने वाला महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर तैयार हो गया और फिर 24 सितंबर 2014 को वो घड़ी भी आई जिसने सारी थकान और शिकायतें दूर कर दी। हमारा अभियान पहली बार में ही सफल हो गया और ये दुनिया का सबसे सस्ता मंगल अभियान था।
मंगलयान की सफलता ने आपका नाम किया ही नहीं बल्कि बदल दिया।
जी हाँ, मजाक में लोग मुझे रॉकेट वुमन कहकर बुलाने लगे। मुझे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला और चंद्रयान 2 की जिम्मेदारी भी।
रितु सेमवाल जी, अपनी अंतरिक्ष विज्ञान यात्रा पर रोचक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 3 की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। रितु सेमवाल जी, नए क्षितिज के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद आकाश जी।
रितु जी, आपका रुझान चिकित्सा, वकालत और कला जैसे पारंपरिक विषयों की बजाय अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ कब और कैसे हुआ?
आकाश जी, चांद तारों से मुझे बचपन से ही प्यार हो गया था। बचपन में घंटों घर की छत पर जाकर चांद तारों को निहारती रहती थी। तरह तरह के सवाल मन में उठते, घर वालों से उनका जवाब ना मिलने पर किताबें छानती फिरती। तभी मन में ठान ली थी कि इन रहस्यों की गुत्थियां खोलनी है, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना है।
घर वालों की क्या राय थी?
हमारा परिवार लखनऊ का एक मध्यवर्गीय परिवार था, फिजूल खर्ची के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन पढ़ाई पर पूरा जोर दिया जाता था। हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया, लेकिन ट्यूशन कोचिंग कभी नहीं कराई गई। पिता रक्षा सेवा में थे, माँ कभी घर का काम करने के लिए नहीं कहती थी। उनका एक ही सपना था कि बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बने। इसलिए 10वीं पास करने के बाद मैंने दोस्तों की सलाह से फैसला किया कि मुझे अंतरिक्ष विज्ञान ही पढ़ना है।
आपने काफी कठिन विषय चुना, इसके लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया?
चांद तारों की दुनिया में दिलचस्पी तो थी ही, विज्ञान के समाचारों को ध्यान से पढ़ने लगी, अखबारों की कतरने संभाल कर रखती और बाद में अपने अध्यापकों से उन पर बहस करती। 12वीं के साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी थी। विज्ञान संस्थान में प्रवेश पाकर अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। सौभाग्य से जैसे ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से बुलावा आया तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा।
लेकिन इसरो तो बेंगलुरु में है, आपको लखनऊ छोड़कर बेंगलुरु जाना पड़ा होगा।
जी हाँ, माँ को चिंता थी कि बेटी इतनी दूर अकेली कैसे रहेगी, पर उन्होंने रोका नहीं, खुशी खुशी जाने दिया और मैं 2 दिन का सफर तय करके इसरो पहुंची। अपनी मंजिल की ओर ये मेरा पहला कदम था।
कैसा लगा आपको वहां पहुंचकर?
मुझे लगा कि जैसे वाकई सितारों का जहां मिल गया। हालांकि उन दिनों इसरो में बहुत कम महिला वैज्ञानिक काम करती थीं, लेकिन मुझे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिला, जिनमें मंगलयान को मैं सबसे प्रमुख मानती हूँ।
मंगलयान पर काम करने की जिम्मेदारी आपको कैसे मिली?
सब कुछ अचानक ही हुआ था। हमारी एक महत्वपूर्ण परियोजना पूरी ही हुई थी कि मुझे बुलाकर कहा गया कि मुझे मंगलयान पर काम करना है। मुझे मंगलयान का संचालन उपनिदेशक बनाया गया था और अभियान को 18 महीनों के भीतर पूरा करना था।
मंगलयान अभियान की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?
सबसे बड़ी चुनौती यही थी, हमें पहली बार में सफलता हासिल करनी थी। अमरीका, रूस, चीन और जापान सभी देश कोशिश कर चुके थे, लेकिन किसी देश का अभियान पहली बार में सफल नहीं हुआ था। अभियान की कामयाबी हमारे संचालन सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती थी।
तब तो काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी।
बस पूछिए मत, सुबह शाम समय का कोई हिसाब नहीं था, ना कोई छुट्टी ना आराम। 10 महीने पलक झपकते ही निकल गए। घर में बच्चे परेशान हो उठे थे, लेकिन 10 महीने बाद मंगलयान का संचालन करने वाला महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर तैयार हो गया और फिर 24 सितंबर 2014 को वो घड़ी भी आई जिसने सारी थकान और शिकायतें दूर कर दी। हमारा अभियान पहली बार में ही सफल हो गया और ये दुनिया का सबसे सस्ता मंगल अभियान था।
मंगलयान की सफलता ने आपका नाम किया ही नहीं बल्कि बदल दिया।
जी हाँ, मजाक में लोग मुझे रॉकेट वुमन कहकर बुलाने लगे। मुझे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला और चंद्रयान 2 की जिम्मेदारी भी।
रितु सेमवाल जी, अपनी अंतरिक्ष विज्ञान यात्रा पर रोचक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4, प्रश्न 16 से 23। शिक्षा को श्रम से जोड़ने की जरूरत पर शिक्षा शास्त्री विनय मोहन के विचारों को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। उनके विचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे।
मनुष्य हर बार सामने आई समस्या पर नए तरीके से सोच सकता है। हर मनुष्य अलग अलग तरीकों से सोच सकता है। सोच पाने की इसी क्षमता को प्रत्युत्पन्न मतित्व कहते हैं। यही वजह है कि लाख प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धि को मनुष्य की क्षमता के बराबर नहीं बना पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्युत्पन्न मतित्व का सीधा संबंध शारीरिक श्रम से है। मनुष्य जब अपने हाथ से काम करता है तो उसका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है और सोचता रहता है कि उस काम को कैसे कम ऊर्जा खर्च करके किया जाए। इसी प्रयास में नए आविष्कार होते हैं। इसलिए अगर हम अपने युवाओं से रचनाशील होने की उम्मीद करते हैं तो उनके प्रत्युत्पन्न मतित्व की क्षमता के विकास पर ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें शारीरिक श्रम में लगाना होगा, श्रम को जीवन का अंग बनाना होगा। इस बात की समझ गांधी जी जैसे चिंतकों को थी, इसीलिए गांधी जी ने अपनी नई तालीम योजना में शिक्षा को श्रम से जोड़ने की बात की थी। विद्यालयों को केवल पुस्तक आधारित बनाने की बजाय उन्हें दैनिक जीवन और उत्पादन से जोड़ने के पीछे शायद यही मकसद रहा होगा कि श्रम और प्रकृति के संयोग से मानव मस्तिष्क ज्यादा प्रत्युत्पन्न मति होगा और समाज में सही रचनात्मक सोच को विकसित कर पाएगा। इसलिए श्रम से शिक्षा को जोड़ने के इस पेच को समझ लेना जरूरी है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि बच्चों में अगर शुरू से ही घर और विद्यालय में काम करने की आदत डाली जाए तो उनमें श्रम के प्रति सम्मान और काम करने वालों के प्रति आदर तो होगा ही, इसका प्रभाव उनकी बौद्धिक क्षमता पर भी पड़ेगा। इससे कल का समाज बेहतर तो बनेगा ही, उन्हें भी इसको समझने में सहायता मिलेगी। लेकिन अगर उन्हें केवल प्रशिक्षित श्रमिक बनाने का प्रयास किया गया तो न वे प्रयोग धर्मी होंगे और न ही सामाजिक। समय आ गया है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर हम भारत को पूंजी के लिए सस्ते श्रम का स्रोत न बनाकर एक अन्वेषी समाज बनाएं। देश की युवा जनसंख्या को केवल पूंजी कमाने का प्रशिक्षण देकर श्रमिक में बदल देना हमारे समाज के प्रति अपराध होगा। आने वाले समय में वही समाज आगे जा पाएगा जो नई खोज कर सके और आने वाली बौद्धिक क्रांति का जनक बन सके। इसके लिए हमारे पास हर तरह की क्षमता है और तकनीक भी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग हुए थे, उनसे सीखने की जरूरत होगी। एक तरफ तो वे विद्यालय थे जिनमें उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते थे और जहां जल्दी ही श्रम को शिक्षा से जोड़ना हेय माना जाने लगा था। दूसरी तरफ सामान्य सरकारी विद्यालय थे जिनमें श्रम को महत्व तो दिया गया लेकिन संसाधन पर्याप्त नहीं दिए गए। इन दोनों के बीच एक और सफल प्रयोग हुआ। जवाहरलाल नेहरू और बिहार के कुछ मनीषियों ने प्रायोगिक तौर पर रांची के करीब नेतरहाट में एक विद्यालय खोला। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सामान्य परिवारों और यहां तक कि अति निर्धन परिवारों के बच्चों को लाया गया। गांधी की नई तालीम और नेहरू की आधुनिक शिक्षा के बीच की कोई व्यवस्था बनाई गई। इस विद्यालय के लगभग 5,000 से ज्यादा छात्र भारत और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में उच्च आधुनिक पेशों में हैं। इस विद्यालय के ज्यादातर शिक्षकों और छात्रों का मानना है कि श्रम के साथ शिक्षा को जोड़ने का प्रयोग ही उनके विद्यालय की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि इसका प्रभाव उनके जीवन दर्शन पर पड़ा है। कुल मिलाकर अगर भारत अपनी युवा पीढ़ी का लाभ पाना चाहता है तो उसे यहां हुए अनेक प्रयोगों से श्रम और शिक्षा को जोड़ने का सबक लेने की जरूरत है। भारत को तकनीकी में प्रशिक्षित सस्ते श्रम के बदले एक ऐसे समाज को दुनिया के सामने रखने की जरूरत होगी जो अन्वेषी हो और जनहितैषी हो।
अभ्यास 4 के इन विचारों को अब आप फिर से सुनेंगे।
मनुष्य हर बार सामने आई समस्या पर नए तरीके से सोच सकता है। हर मनुष्य अलग अलग तरीकों से सोच सकता है। सोच पाने की इसी क्षमता को प्रत्युत्पन्न मतित्व कहते हैं। यही वजह है कि लाख प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धि को मनुष्य की क्षमता के बराबर नहीं बना पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्युत्पन्न मतित्व का सीधा संबंध शारीरिक श्रम से है। मनुष्य जब अपने हाथ से काम करता है तो उसका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है और सोचता रहता है कि उस काम को कैसे कम ऊर्जा खर्च करके किया जाए। इसी प्रयास में नए आविष्कार होते हैं। इसलिए अगर हम अपने युवाओं से रचनाशील होने की उम्मीद करते हैं तो उनके प्रत्युत्पन्न मतित्व की क्षमता के विकास पर ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें शारीरिक श्रम में लगाना होगा, श्रम को जीवन का अंग बनाना होगा। इस बात की समझ गांधी जी जैसे चिंतकों को थी, इसीलिए गांधी जी ने अपनी नई तालीम योजना में शिक्षा को श्रम से जोड़ने की बात की थी। विद्यालयों को केवल पुस्तक आधारित बनाने की बजाय उन्हें दैनिक जीवन और उत्पादन से जोड़ने के पीछे शायद यही मकसद रहा होगा कि श्रम और प्रकृति के संयोग से मानव मस्तिष्क ज्यादा प्रत्युत्पन्न मति होगा और समाज में सही रचनात्मक सोच को विकसित कर पाएगा। इसलिए श्रम से शिक्षा को जोड़ने के इस पेच को समझ लेना जरूरी है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि बच्चों में अगर शुरू से ही घर और विद्यालय में काम करने की आदत डाली जाए तो उनमें श्रम के प्रति सम्मान और काम करने वालों के प्रति आदर तो होगा ही, इसका प्रभाव उनकी बौद्धिक क्षमता पर भी पड़ेगा। इससे कल का समाज बेहतर तो बनेगा ही, उन्हें भी इसको समझने में सहायता मिलेगी। लेकिन अगर उन्हें केवल प्रशिक्षित श्रमिक बनाने का प्रयास किया गया तो न वे प्रयोग धर्मी होंगे और न ही सामाजिक। समय आ गया है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर हम भारत को पूंजी के लिए सस्ते श्रम का स्रोत न बनाकर एक अन्वेषी समाज बनाएं। देश की युवा जनसंख्या को केवल पूंजी कमाने का प्रशिक्षण देकर श्रमिक में बदल देना हमारे समाज के प्रति अपराध होगा। आने वाले समय में वही समाज आगे जा पाएगा जो नई खोज कर सके और आने वाली बौद्धिक क्रांति का जनक बन सके। इसके लिए हमारे पास हर तरह की क्षमता है और तकनीक भी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग हुए थे, उनसे सीखने की जरूरत होगी। एक तरफ तो वे विद्यालय थे जिनमें उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते थे और जहां जल्दी ही श्रम को शिक्षा से जोड़ना हेय माना जाने लगा था। दूसरी तरफ सामान्य सरकारी विद्यालय थे जिनमें श्रम को महत्व तो दिया गया लेकिन संसाधन पर्याप्त नहीं दिए गए। इन दोनों के बीच एक और सफल प्रयोग हुआ। जवाहरलाल नेहरू और बिहार के कुछ मनीषियों ने प्रायोगिक तौर पर रांची के करीब नेतरहाट में एक विद्यालय खोला। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सामान्य परिवारों और यहां तक कि अति निर्धन परिवारों के बच्चों को लाया गया। गांधी की नई तालीम और नेहरू की आधुनिक शिक्षा के बीच की कोई व्यवस्था बनाई गई। इस विद्यालय के लगभग 5,000 से ज्यादा छात्र भारत और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में उच्च आधुनिक पेशों में हैं। इस विद्यालय के ज्यादातर शिक्षकों और छात्रों का मानना है कि श्रम के साथ शिक्षा को जोड़ने का प्रयोग ही उनके विद्यालय की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि इसका प्रभाव उनके जीवन दर्शन पर पड़ा है। कुल मिलाकर अगर भारत अपनी युवा पीढ़ी का लाभ पाना चाहता है तो उसे यहां हुए अनेक प्रयोगों से श्रम और शिक्षा को जोड़ने का सबक लेने की जरूरत है। भारत को तकनीकी में प्रशिक्षित सस्ते श्रम के बदले एक ऐसे समाज को दुनिया के सामने रखने की जरूरत होगी जो अन्वेषी हो और जनहितैषी हो।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।